भजन संहिता 95, भजन 95 पद 1 से लेकर 7 तक। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर में गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता। ये सुंदर भजन प्रभु के गीत गाने को प्रोत्साहन प्रदान करता है और सिखाता है कि उसके स्तुति गान का स्वर उठाएं और धन्यवाद के साथ उसकी उपस्थिति में आएं। परमेश्वर की महानता के लिए आनंद पूर्वक स्तुति का गुणगान करने का ये भजन वास्तव में एक मनोहर भजन है। यहां एक चुनौती है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भजन 95 पद 7 से लेकर 11 तक। कि आज तुम उसकी बात सुनते, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वो मसा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। इसमें हमें आगाह किया गया है कि हम परमेश्वर और उसके कामों के प्रति अपने मन कठोर ना करें। हमें इसराइल के संतान का उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने जंगल के मार्ग से प्रतिज्ञा के देश आते समय अपने मन किस प्रकार कठोर किए थे। वे लोग उस देश की सीमा पर तो आ गए थे जिस स्थान को परमेश्वर ने उन्हें देने की प्रतिज्ञा की थी। परमेश्वर ने उन लोगों से अद्भुत प्रतिज्ञाएं की थी। उसने कहा, मैं तेरे सामने से सब शत्रुओं को निकाल दूंगा, मैं तेरे सामने सामने चलूंगा और तेरे शत्रुओं को निकाल दूंगा और जहां जहां तू पांव रखेगा मैंने तेरे विरासत के लिए दे दिया है। ये सभी श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं। मूसा ने कहा, ठीक है, हम भेदिए भेजेंगे ताकि वे उस शहर का भेद ले आए और हमें ज्ञात हो जाए कि जिस देश में हम जाने वाले हैं वो देश कैसा है। इसलिए हमें से हर गोत्र से एक एक पुरुष उस देश का भेद लेने के लिए भेजा जाए। और जब वे वापस लौटे तब 10 पुरुष ऐसे थे जिन्होंने हिम्मत तोड़ने वाला समाचार दिया। शहर बड़ा है, शहर पना ऊंची है और जो लोग वहां रहते हैं राक्षस जैसे हैं, और हम उनके सम्मुख टिड्डियों की तरह हैं, वे लोग हमें खा जाएंगे। यहोशू और कालेब प्रोत्साहन करने वाला समाचार लाए। उन्होंने कहा, हां वे राक्षस जैसे हैं लेकिन वे हमारे लिए भोजन ठहरे हैं, हम चले और उन्हें खा जाएं। उनकी सुरक्षा जाती रही है, हम अभी जाकर उन्हें ले लें। परंतु वे लोग उन 10 पुरुषों के समाचार से हतोत्साह थे जो बुरी खबर लाए थे, और वे परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाने लगे और उन्होंने कहा, हम एक अगुआ नियुक्त करें जो हमें वापस मिस्र ले जाए। हमने मूसा का यहां तक अनुसरण करके बड़ी मूर्खता की है। परमेश्वर का कोप उन पर भड़का क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। वे विश्वास में स्थिर न रहे कि परमेश्वर उन्हें विश्राम के देश में लाया है और वो उस देश को उनके अधीन कर देगा, क्योंकि ये उसकी प्रतिज्ञा है। अपने अविश्वास के कारण उन्होंने विश्राम में प्रवेश नहीं किया और 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे और नाश हुए। पौलुस कहता है, जो कुछ भी हुआ ये सब हमारे लिए उदाहरण था। इसराइल का मिस्र देश से छुटकारा और प्रतिज्ञा के देश में आने की कहानी उनका इतिहास है। ये आत्मिक क्षेत्र में उपमाएं हैं। मिस्र देश पुराने दासत्व का जीवन को दर्शाता है, जो हमारा पापी जीवन था। प्रतिज्ञा का देश और उसमें प्रवेश उस महिमामय आत्मिक जीवन को दर्शाता है, जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपनाएं। यही विश्राम का जीवन है, अर्थात परमेश्वर में विश्राम। मेरे मन परिवर्तन और आत्मा के परिपूर्ण जीवन में प्रवेश करने के बीच एक जंगल का समय होता है, जिसे मुझे पार करना है। मेरा जंगल का ये अनुभव स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे परमेश्वर के बारे में सीखता जाता हूँ। जैसे जैसे परमेश्वर अपनी सामर्थ मुझ पर प्रकट करता जाता है, जैसे जैसे मैं मरीबा के कड़वे पानी के पास आता हूँ, वैसे वैसे देखता हूँ कि परमेश्वर कैसे उस कड़वे पानी को मीठा बना देता है, और तब मैं समझ पाता हूँ कि परमेश्वर कैसे मेरे जीवन के कड़वे अनुभवों को आग के खंभे के साथ और बादल के साथ लेकर चलता है। जब मैं उसका अनुसरण करना सीखता हूँ, तब मैं ये भी सीखता हूँ कि अपना जीवन उसको सौंप दूँ और उस पर भरोसा रखूँ कि वो इस नए संबंध को मिठास से भर दे। वो इस नए जीवन में आ जाने पर मेरा मार्गदर्शन करेगा, वरन मुझे लेकर चलेगा। परंतु उस जंगल के अनुभव का एक अनुचित पहलू भी है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जीवन आत्मिक उतार चढ़ाव में बीते। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको बहुतायत का छलकता हुआ आत्मिक जीवन प्रदान करे। वो आपको अपने विश्राम में लाना चाहता है, उस महिमामय विश्राम में जो उसने अपने लोगों के लिए आरक्षित रखा है, जिसमें आप ना चिंता करेंगे, ना परेशान होंगे और ना ही उतवाले होंगे। वहां केवल निश्चितता है और विश्राम होगा। बाकी सब परमेश्वर की चिंता का विषय है। आप जानते हैं कि हमारा प्रभु स्थान तैयार करने गया है। उसने अपने आप को आप पर सत्य सिद्ध कर दिया है। आपको विश्वास है कि सब चीजें उसके अधीन है और रहने के लिए वो एक भव्य स्थान है। हमने सीखा है कि विपदाओं में भी परमेश्वर का हाथ कार्य कर रहा है। वो अपना उद्देश्य, अपनी इच्छा पूरी करेगा और उत्तम भलाई के लिए होगा। हमने देखा कि इसराइल की संतान जंगल में नष्ट हो गई और प्रतिज्ञा किए हुए देश में कभी नहीं पहुंची। इब्रानियों की पुस्तक में इस भजन का संदर्भ दिया गया है, जैसा कि वचन कहता है, यदि तुम आज उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदयों को कठोर मत करो, जैसा क्रोध दिलाने के दिन हुआ था। परमेश्वर के विरोध में अपने हृदय को कठोर ना करो, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, इब्रानियों 4:1। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। आज भी बहुत से लोग उसके विश्राम में पहुंचने नहीं पाए हैं। आपका मसीही अनुभव अब भी जंगल के अनुभव की तरह है। आप अभी तक परमेश्वर के संपूर्ण विश्राम में नहीं पहुंचे हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप विश्राम में अवश्य पहुंचे। इसलिए सावधान हो जाओ, ऐसा न हो कि आप में से कोई भी उसके विश्राम के बिना छूट जाए। कितने दुख की बात है कि जब हमारे लिए विश्राम है, हम बेचैन और चिंतित हैं। परमेश्वर ने विश्राम की प्रतिज्ञा की है, अपने हृदयों को कठोर मत करो, परमेश्वर पर विश्वास रखो।